بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراج ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا متروں کی سیوا میں زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ شروتا، آج ہم اپنے کارکرم کا آرمبھ سورہ بقرہ کی آیت کرمانک 207 سے 210 تک کی تلاوت اور انواد سے کر رہے ہیں۔ تلاوت کا شرے پراپت کر رہے ہیں پرخیات قاری پور زرگری۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔
اللہ کے نام سے جو اتیانت کرپاشیل اور دیاوان ہے، اور ایمان والوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو ایشور کی پرسنتا پراپت کرنے کے لیے اپنی جان بھی دے دیتا ہے، اور ایشور اپنے بندوں کے پرتی اتین دیاوان ہے۔ ہے ایمان والو، تم سب کے سب شانتی میں پرویش کرو اور ایشور کے پرتی سمرپت رہو، اور شیطان کے پد چنوں کا انوسرن نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا ہوا شترو ہے۔ پھر یدی تم ان سب اسپشٹ نشانیوں اور چمتکاروں کے آنے کے بعد بھی پھسل کر پد بھرشٹ ہو گئے تو جان لو کہ ایشور پربھتوشالی اور تتو درشی ہے۔ کیا یہ پد بھرشٹ اتنے سارے اسپشٹ ترکوں کے باوجود اس بات کی پرتیکشا کر رہے ہیں کہ ایشور اور فرشتے بادلوں کی چھایا میں پرکٹ ہو کر ان کے سامنے آئیں اور ان کے سمکش نئے ترک رکھیں تاکہ یہ ایمان لائیں، جبکہ لوگوں کے مارگ درشن کے بارے میں ایشوری آدیش پورا ہو چکا ہے اور سبھی معاملے ایشور ہی کی اور لوٹائے جائیں گے۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے، شتاب میں ہوں احمد عباس، میرا سلام سویکار کیجیے۔ ہمارا یہ پرسارن آپ شارٹ ویو میں 25 میٹر بینڈ برابر 11,860 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے hindi@ws.irib.ir۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے parstoday.com/hi۔ واٹس ایپ پر ہمارا سمپرک نمبر ہے 0098-9035065492۔ شروع شنیوار ہے، ذی الحجہ کی 9، تیر کی 18 اور جولائی کی بھی 9 تاریخ۔ شروع 9 ذی الحجہ عید الاضحیٰ کی پورو سندھیا ہے، اس اپلکش میں ہم بدھائی پرستت کرتے ہیں۔ اس سمے کی سبھا میں پرستت کیے جانے والے کاریکرموں کی روپ ریکھا اس پرکار ہے۔ سب سے پہلے آپ انتراشٹریہ سماچار سنیں گے، جس کے بعد کاریکرم راجنیتک چرچا آپ کی سیوا میں پرستت کیا جائے گا۔ راجنیتک چرچا کے بعد عرفہ دیوس کے اپلکش میں ایک وشیش کاریکرم ہم آپ کو سنائیں گے، اور سبھا کا انتم کاریکرم ہوگا اجول بھوشیہ۔ تو یہ ہے کاریکرموں کی روپ ریکھا، اب سے کچھ دیر بعد آپ سنیں گے انتراشٹریہ سماچار۔ یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے، لیجیے شروع سنیے انتراشٹریہ سماچار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے آج کے مکھیہ سماچاروں کا سارانش۔ ایران کے راشٹرپتی نے کہا ہے کہ اسلامی جگت میں مت بھید پھیلانے کے لیے 2 ہتھ کنڈوں کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ شنزو آبے ہتیا کانڈ میں کچھ نئی باتیں سامنے آئی ہیں اور قتل کی وجہ کے بارے میں سوتروں نے کچھ جانکاریاں دی ہیں۔ ایران پر امریکی پابندیوں کے معاملے میں بھارت اپنی پچھلی نیتی سے سبق لیتے ہوئے روس کے معاملے میں یہ غلطی نہ دہرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ شری لنکا میں راجنیتک اور آرتھک سنکٹ اور بھی گہرا گیا ہے۔ اور اب آپ وستار سے سماچار سنیے۔ اسلامی گڑتنتر ایران کے راشٹرپتی سید ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ اسلامی جگت میں اشانتی پھیلانے کے لیے 2 ہتھ کنڈوں کو پریوگ کیا جا رہا ہے، مت بھید اور تکفیری آتنکواد۔ ایران کے راشٹرپتی سید ابراہیم رئیسی نے پشمی ایران کے کردستان پرانت کی یاترا میں وہاں کے دھرم گروؤں سے ملاقات میں یہ بات کہی۔ اس ملاقات میں انہوں نے مسلمانوں سے سچیت رہنے کے لیے کہا اور کہا کہ آپسی مت بھیدوں اور تکفیری آتنکواد کے مادھیم سے اسلامی جگت کو چوٹ پہنچائی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے بیچ مت بھیدوں کا ہوا دینے جیسا کام پچھلے کئی برسوں سے اسلام کے دشمن کر رہے ہیں۔ سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ ایسی استھتی میں مت بھیدوں کو دور کرنا اور مسلمانوں کے بیچ مت بھید پھیلانے والے کارکوں کو سماپت کرنا بہت ضروری ہے۔ ایران کے راشٹرپتی کا کہنا تھا کہ ورتمان سمے میں پورا اسلامی جگت برٹین، امریکہ اور زائنی شاسن دوارا پیدا کیے جانے والے شڈینتروں کا شکار ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس اور اسلامی کرانتی کے ورشٹھ نیتا آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنے نے پہلے بھی دھیان کیندرت کروایا تھا، کنتو اس بات کو سمجھنے میں اسلامی جگت کو کچھ سمے لگا۔ سید ابراہیم رئیسی کے انوسار ورشٹھ نیتا کے اس سمبندھ میں کافی پہلے چیتاونی دینے کی اور اگر دھیان دیا گیا ہوتا تو یہ استھتی اور بہتر ہوتی۔ ایران کے راشٹرپتی سید ابراہیم رئیسی نے جاپان کے پورو پردھان منتری کی ہتیا پر ورتمان پردھان منتری کو شوک سندیش بھیجا۔ راشٹرپتی ابراہیم رئیسی نے جاپانی پردھان منتری فومیو کیشیدا کو بھیجے گئے شوک سندیش میں شنزو آبے کی ہتیا پر دکھ جتایا۔ انہوں نے لکھا کہ شنزو آبے کی ایک
अमानवीय कार्यवाही में हुई हत्या पर मैं जापानी राष्ट्र और सरकार को संवेदना प्रकट करता हूं। ईरान के राष्ट्रपति इस शोक संदेश में लिखते हैं कि दिवंगत शिंजो आबे जापानी जनता के एक बड़े राजनेता थे। वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के व्यक्तित्व के स्वामी थे। उन्होंने जापान और ईरान के संबंधों में विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री की मौत पर ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने भी जापान के अपने समकक्ष को शोक संदेश भेजा है। उल्लेखनीय है कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे शुक्रवार की सुबह एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। भाषण के दौरान उन पर पीछे से गोली चलाई गई। गोली लगने के बाद वे जमीन पर गिर पड़े। गोली लगने के फौरन बाद शिंजो आबे को हेलीकॉप्टर से अस्पताल ले जाया गया। शिंजो आबे को बचाने के लिए मेडिकल टीम ने कई घंटे तक मेहनत की, लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का शव नारा शहर से राजधानी टोक्यो लाया गया है। शिंजो आबे को नारा शहर में चुनाव प्रचार के दौरान एक व्यक्ति ने शुक्रवार को फायरिंग करके हताहत कर दिया। सोमवार को एक शोक कार्यक्रम रखा जाएगा और मंगलवार को शिंजो आबे का अंतिम संस्कार किया जाएगा, जिसमें आबे के परिवार के लोग और दोस्त व रिश्तेदार भाग लेंगे। आबे की गर्दन में दो गोलियां मारी गईं, जिसके कुछ घंटे बाद उनकी मौत हो गई। 20 डॉक्टरों की टीम ने लाख जतन किए, लेकिन उन्हें नहीं बचा सकी। फायरिंग करने वाले व्यक्ति ने इकरार किया है कि उसने जानबूझकर आबे को गोली मारी, क्योंकि वो एक संस्था से बहुत नाराज था और उसका मानना था कि इस संस्था का संबंध आबे से है। स्थानीय मीडिया का कहना है कि कातिल का संबंध एक खास धार्मिक संप्रदाय से है, मगर इस बारे में ज्यादा ब्यौरा नहीं दिया गया है। जापान की समाचार एजेंसी क्योडो ने बताया कि कातिल ने जापान की नौसेना में नौकरी की है और उसने पीछे से बहुत कम दूरी से आबे को गोली मारी। उसने कैमरे के रूप में बंदूक तैयार की थी। पुलिस ने कातिल के घर से तलाशी में कई बंदूकें बरामद की। पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं कि वो आबे को बचाने में कैसे नाकाम हो गई। अब पुलिस बड़ी हस्तियों के लिए किए जाने वाले सुरक्षा इंतजाम की नए सिरे से समीक्षा करेगी। ईरान पर पाबंदियों के मामले में अमरीकी बात मानकर भारत ने सबक सीखा है और रूस के मामले में वो इस गलती को नहीं दोहराएगा। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने ईरान पर अमरीकी पाबंदियों के संदर्भ में अपनी एक समीक्षा लिखी है, जिसमें समाचार एजेंसी का कहना है कि भारत के अधिकारी ईरान के खिलाफ अमरीका की पाबंदियों के मसले में जो गलती कर चुके हैं, उसे रूस के मामले में हरगिज नहीं दोहराना चाहते। यही वजह है कि चीन की तरह भारत भी लगातार रूस से तेल खरीद रहा है। यूक्रेन की जंग शुरू होने के बाद से ही अमरीकी अधिकारी इस कोशिश में लगे हैं कि रूस से तेल का निर्यात कम हो जाए, ताकि इस तरह रूस को सजा दी जा सके। मगर भारत की रिफाइनरियां इसके बिल्कुल विपरीत दिशा में अमल कर रही हैं। उन्होंने रूस से तेल का आयात कम करने के बजाय बढ़ा दिया है। इस बीच भारत सरकार अपनी कंपनियों को अमरीकी पाबंदियों से बचाने के लिए कुछ उपाय भी तलाश कर रही है। इसका साफ मतलब यह है कि अमरीकी पाबंदियों को नाकाम बनाने की प्रक्रिया जारी है। भारत ने मई महीने में रूस से रोजाना 8,19,000 बैरल तेल खरीदा, जबकि इससे पहले वाले महीने में भारत ने इस देश से 2,77,000 बैरल तेल खरीदा था। अगर एक साल पहले की बात की जाए तो इसी महीने में भारत ने रूस से मात्र 33,000 बैरल तेल ही खरीदा था। रूस ने अब तेल के निर्यात में सऊदी अरब को भी पीछे छोड़ दिया है और भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश बन गया है। भारत को सबसे ज्यादा तेल का निर्यात इस समय इराक कर रहा है। भारत ने यूक्रेन युद्ध रोके जाने की मांग तो की है, मगर उसने रूस के हमले की आलोचना नहीं की। चीन ने भी भारत ही की तरह रूस से बहुत ज्यादा तेल खरीदा है और रूस को अलग थलग करने की पश्चिमी देशों की कोशिशें इस तरह नाकाम हो गई। भारत के अधिकारी नहीं चाहते कि ईरान के संदर्भ में जो गलती उन्होंने की थी उसे रूस के मामले में दोहराएं। भारत ने ईरान पर लगी अमरीकी पाबंदियों पर अमल किया और ईरान से तेल खरीदना कम कर दिया, जबकि चीन ने इन पाबंदियों का फायदा उठाया और उसने ईरान से तेल खरीदना जारी रखा, जबकि उसने अपनी कंपनियों को अमरीका की पाबंदियों और जुर्माने से भी सुरक्षित रखा। अब भारत इस तर्क के साथ काम कर रहा है कि अगर चीन रूस से तेल खरीद सकता है तो भारत क्यों नहीं खरीद सकता। श्रीलंका में संकट और भी गहरा आ गया है। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे राष्ट्रपति भवन से फरार हो गए हैं, जबकि प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन पर धावा बोल दिया है। बताया जाता है कि प्रधानमंत्री आवास पर भी प्रदर्शनकारियों का हमला हो गया है और प्रधानमंत्री ने भी त्यागपत्र दे दिया है। श्रीलंका के रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रपति राजपक्षे को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया। वहीं प्रधानमंत्री रानिल विक्रमासिंघे ने राष्ट्रपति के फरार होने के बाद सरकार की आपात बैठक तो बुलाई थी, लेकिन प्रदर्शनकारी संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने प्रधानमंत्री आवास पर भी हमला किया। अधिकारियों का कहना है कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए हवाई फायरिंग की। स्थानीय टीवी चैनल ने दिखाया कि प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन में दाखिल हो गए, जहां कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए थे। पुलिस ने रुकावटें भी लगाई थी, हवाई फायरिंग भी की और आंसू गैस के गोले भी फायर किए, मगर प्रदर्शनकारी फिर भी राष्ट्रपति भवन के भीतर घुस गए। राष्ट्रपति राजपक्षे जब आर्थिक संकट को हल करने में नाकाम हो गए तो उनके खिलाफ प्रदर्शनों में तेजी आ गई। पुलिस ने कर्फ्यू का ऐलान किया तो प्रदर्शनकारियों ने धमकी दी कि पुलिस प्रमुख के खिलाफ अदालती कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी, जिसके बाद कर्फ्यू हटा लिया गया। प्रदर्शनकारियों ने दूसरे शहरों से रेलवे को मजबूर किया कि उन्हें राजधानी कोलंबो पहुंचाए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपील की थी कि सरकार और प्रदर्शनकारी दोनों ये कोशिश करें कि प्रदर्शन के दौरान कोई हिंसा न हो। लेबनान के हिजबुल्लाह आंदोलन का कहना है कि डरा हुआ इसराइल बार बार लेबनान को धमकियां दे रहा है और यह हकीकत बिल्कुल जाहिर है। हिजबुल्लाह आंदोलन के धार्मिक मामलों की समिति के प्रमुख शेख मोहम्मद यजबक ने कहा कि हिजबुल्लाह ने कारिश गैस फील्ड के ऊपर ड्रोन भेजकर अपना संदेश दे दिया। दूसरी ओर हिजबुल्लाह की कार्यकारी समिति के उप प्रमुख अली दामुश ने कहा कि लेबनानियों की असली ईद उस दिन होगी जब अमरीका की ओर से जारी नाकाबंदी को हम शिकस्त दे देंगे, क्योंकि लेबनानियों को बिजली के संकट सहित जिन समस्याओं का सामना है उसकी वजह अमरीका है। शेख अली दामोश ने कहा कि अमरीका ही मिस्र और जॉर्डन से गैस के आयात में रुकावट डाल रहा है, जबकि दूसरी ओर रूस, चीन, ईरान और कुछ अन्य देशों की ओर से लेबनान में बिजली पैदा करने के प्रस्तावों पर अमल के रास्ते में भी अमरीका ही रुकावट बना हुआ है। दामोश ने कहा कि अगर लेबनान के अधिकारी हिम्मत दिखाते तो इन प्रस्तावों पर अमल किया जा सकता था, लेकिन समस्या यह है कि अधिकारी वॉशिंगटन से डरते हैं। यमन के अंसारुल्ला आंदोलन ने सऊदी अरब की नीतियों की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि सऊदी सरकार हाजियों से तो भारी कीमत वसूल कर रही है, लेकिन बड़ी बेशर्मी के साथ यहूदी टीमों की सेवा करती है। अंसारुल्ला के प्रमुख सैयद अब्दुल मलिक अलहौसी ने ईद उल अजहा के उपलक्ष्य में भाषण देते हुए इस्लामी उम्मत और हाजियों को इस ईद की बधाई दी और कहा कि हज इस्लाम के बुनियादी स्तंभों में है, लेकिन हज के बारे में सऊदी सरकार की नीतियों के चलते बहुत सारे लोग इस इलाही फरीजे को अदा करने में से महरूम रह जाते हैं। और इसी के साथ रेडियो तेहरान से समाचार समाप्त हुए।
ये प्रसारण आप रेडियो तहरान की हिंदी सेवा से सुन रहे हैं।
राजनीतिक चर्चा।
दोस्तों, कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा लेकर मैं सैयद मिसम आपकी सेवा में हाजिर हूं। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जायजा ले रहे हैं कायम रिज़वी।
जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शिंजो आबे शुक्रवार को जापान के नारा नगर में जिस समय एक चुनावी कार्यक्रम में भाषण दे रहे थे, तभी उन पर हमला किया गया। इस हमले के बाद उनकी मौत हो गई। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री पर पीछे से गोली मारी गई। कई घंटों तक अस्पताल में उपचार के बावजूद शिंजो आबे को बचाया नहीं जा सका। पुलिस ने घटनास्थल से आक्रमणकारी को गिरफ्तार कर लिया, जिसका नाम तित्सुआ यामागामी बताया जा रहा है। 41 वर्षीय ये व्यक्ति जापान की वायुसेना में भी काम कर चुका है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की चुनावी सभा के दौरान हत्या पर इसलिए अधिक आश्चर्य जताया जा रहा है क्योंकि जापान एक बहुत ही शांतिप्रिय और सुरक्षित देश है। यहाँ पर हथियारों को लेकर कानून बहुत ही सख्त हैं। जापान दुनिया के उन गिने चुने देशों में से एक है जहाँ पर हथियारों के बारे में बहुत ही कठोर नियम लागू हैं। इस देश में बहुत ही कम सशस्त्र घटनाएं घटती हैं। उदाहरण स्वरूप, सन 2014 में जापान में हथियारों के प्रयोग के कारण केवल 6 लोगों की मौत हुई थी, जबकि इसी समय अवधि में अमेरिका में गोलीबारी के दौरान मरने वालों की तादाद हजारों में थी। शिंजो आबे जापान में सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री पद पर आसीन रहे। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने बताया था कि उनकी एक बीमारी फिर से उभर आई है, इसलिए वे प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दे रहे हैं। 52 वर्ष की आयु में पहली बार वे जापान के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री चुने गए थे। शिंजो आबे जापान की सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के बहुत ही प्रभावशाली नेता थे। उनकी हत्या पर विश्व के देशों में दुख की लहर दौड़ गई। उनकी मौत पर ईरान सहित विश्व के बहुत से देशों के नेताओं ने शोक व्यक्त किया। जापान के संसदीय चुनाव अब 2 दिन के बाद ऐसी हालत में आयोजित होंगे कि सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के कद्दावर नेता मौजूद नहीं होंगे। शिंजो आबे ने जापान में कई चुनाव जीते और जापान की रक्षा क्षमता को उन्होंने बढ़ाया। जापान में आर्थिक सुधार करने में इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस देश की अर्थव्यवस्था को सही करने के लिए शिंजो आबे ने जो कार्यक्रम पेश किया था उसको आबेनॉमिक के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ जापान के पूर्व प्रधानमंत्री की विदेश नीति भी सराहनीय रही है। शिंजो आबे ने जापान के संविधान के अनुच्छेद 9 को बदलने की बहुत कोशिश की, जिसमें यह कहा गया है कि एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जापान युद्ध को हमेशा के लिए त्यागता है। वो बल का प्रयोग केवल अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के लिए ही करता है। हालांकि ये बदलाव उनकी मौत तक संभव नहीं हो पाया। जापान में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री का पद संभालने वाले शिंजो आबे अब हमारे बीच मौजूद नहीं है। वे न केवल जापान में बल्कि विश्व के दूसरे देशों में भी बहुत ही लोकप्रिय नेता थे।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा।
महमूद अब्बास और बेनी गेंट्स की हालिया मुलाकात के पीछे का राज क्या है, जायजा ले रहे हैं अहमद अब्बास।
इस्माइल हनिया से मुलाकात के 2 दिन बाद ही फिलिस्तीनी अथॉरिटी के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने इसराइली रक्षा मंत्री बेनी गेंट्स से मुलाकात की। बेनी गेंट्स ने रमल्ला में फिलिस्तीनी अथॉरिटी के प्रमुख महमूद अब्बास से मुलाकात की। अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन के क्षेत्र की यात्रा से कुछ दिन पहले ये मुलाकात हुई है, इसलिए इसे काफी अहम माना जा रहा है। हालांकि इस मुलाकात के बारे में कुछ अहम बिंदुओं का उल्लेख जरूरी है। सबसे पहले तो यह कि पिछले 1 साल के दौरान महमूद अब्बास और बेनी गेंट्स के बीच ये दूसरी मुलाकात है। इससे पहले वाली मुलाकात भी रामल्ला में ही हुई थी। इस मुलाकात के बाद इसराइली रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा था कि बेनी गेंट्स ने फिलिस्तीनी अथॉरिटी के मुखिया से कहा है कि इसराइल फिलिस्तीनी अथॉरिटी की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने का प्रयास करेगा। इससे पता चलता है कि अब्बास और गेंट्स के बीच मुलाकात में फिलिस्तीन के राष्ट्रीय हितों पर चर्चा नहीं हुई, बल्कि गेंट्स ने फिलिस्तीनी अथॉरिटी के हितों का ख्याल रखने पर जोर दिया ताकि तेल अवीव और रामल्ला के बीच षड्यंत्रकारी वार्ता जारी रह सके। हालांकि हमास समेत अन्य फिलिस्तीनी गुट रामल्ला और ज़ायोनी शासन के बीच जारी सुरक्षा सहयोग का विरोध करते रहे हैं और इसे समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। دوسرے یہ کہ پچھلے سال بینی گینٹس اور محمود عباس کے بیچ جو ملاقات ہوئی وہ اسرائیل کے پورو پردھان منتری نفتالی بینت کے امریکہ کے دورے سے کچھ گھنٹوں کی واپسی کے بعد ہوئی، جبکہ دوسری ملاقات امریکی راشٹرپتی کے اس کھیتر کی یاترا سے کچھ دن پہلے ہوئی ہے۔ بائیڈن اویدھ ادھکرت علاقوں کا بھی دورہ کریں گے اور وہ محمود عباس سے بھی ملاقات کر سکتے ہیں۔ وشلیشکوں کا ماننا ہے کہ بائیڈن کی سعودی عرب سمیت اس کھیتر کی یاترا کا مکھ ادیش کھیتریہ دیشوں کو اسرائیل کے ساتھ سمبندھوں کو سامان بنانے کے لیے راضی کرنا ہے۔ یہ وہی ایجنڈا ہے جسے امریکہ کے پورو راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ نے شروع کیا تھا اور اسے ابراہم ایکارڈ کا نام دیا گیا تھا۔ دراصل یہ اس شتابدی کی سب سے بڑی سازشوں میں سے ایک ہے جسے زائونی شاسن کی سرکشا اور اس کے ہتوں کی آپورتی کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ تیسرا بندو یہ کہ عباس اور گینٹس کی ملاقات حماس کے نیتا اسماعیل ہنیہ اور محمود عباس کی ایتہاسی ملاقات سے صرف دو دن بعد ہوئی ہے۔ عباس اور ہنیہ 15 سال بعد ایک دوسرے سے ملے۔ الجیریا کے راشٹرپتی نے اس ملاقات کے لیے بھومی پرشست کی تھی اور دونوں فلسطینی نیتاؤں کے بیچ مدھیستھتا کی تھی۔ حماس نے اس ملاقات کو بھائی چارے والی ملاقات قرار دیا ہے۔ اس سے یہ بھی امید بڑھ گئی تھی کہ فلسطینی اتھارٹی اور غزہ کے بیچ متبھید دور ہوں گے، لیکن گینٹس کی تتپرتا نے ایک بار پھر یہ ثابت کر دیا کہ اسرائیل فلسطینیوں کو بانٹ کر رکھنا چاہتا ہے اور انہیں ایکجٹ نہیں ہونے دے رہا ہے۔
اور اب رخ کرتے ہیں بھارت کا۔ بھارت پرشاسی جموں کشمیر میں امرناتھ یاترا کے دوران بادل پھٹنے کے کارن کئی تیرتھ یاتری لاپتہ ہو گئے ہیں۔ بیورا دے رہے ہیں شینگر سے سپتے حسن۔
دکشنی کشمیر کے ہمالیہ سلسلے میں سطح سمندر سے 13,000 فٹ کی بلندی پر استھت ہندو کے ایک پوتر استھان امرناتھ گفا کے نکٹوتی چھیتروں میں جمعہ کی شام بادل پھٹنے سے ہوئی تباہی میں اب تک مرنے والوں کی سنکھیا 16 ہو گئی ہے، جبکہ سماچاروں کے انوسار یہ سنکھیا اسے کہیں زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ پرشاسن کا کہنا ہے کہ 40 سے زائد یاتری اب بھی لاپتہ ہیں، جن کے تلاش کے لیے وسیع پیمانے پر ریسکیو آپریشن آرمبھ کر دیا گیا ہے۔
قریب 5:30 بجے بادل پھٹ گیا امرناتھ گفا کے سامنے میں، تو جس کے لیے ہم بہت ہی مدد تھے، اس کے لیے جو لوگ اس پہ ہتاہت ہوئے ہیں اس کے لیے ہم شردھانجلی دینا چاہیں گے، باقی پریوار کے ہمت کے لیے دینا چاہیں گے۔
استھانیہ لوگوں کا کہنا ہے کہ کل 5:30 بجے جو ہی بادل پھٹ گئے اور نکٹوتی چھیتروں کے بالائی چھیتروں سے پانی کے بھاری بھرکم ریلے بہنے لگے، جس کے فلسوروپ امرناتھ یاتریوں کے لیے بیس کمپ میں استھت لنگر اور درجنوں خیمے بھی لوگوں سہت بہنے لگے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک قیامت خیز منظر تھا، جس کے کارن وہاں پر خوف و دہشت کا ماحول پیدا ہو گیا اور ہر طرف چیخ و پکار کی آوازیں سننے کو آ رہی تھی۔ ابھی تک سینا، اردھ سینک بلوں اور این ڈی آر ایف نے کاروائیاں جاری رکھی ہوئی ہیں۔ پرشاسن کا کہنا ہے کہ ان کے سامنے سب سے بڑا چیلنج ان یاتریوں کو تلاش کرنا ہے جو لاپتہ ہیں۔ استھانیہ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ اس گھٹنا میں اپنا مال بھی کھو چکے ہیں، پرنتو انہیں زیادہ فکر انسانی جانوں کی ہے جو کل شام سے لاپتہ ہیں۔
ہمیں مال کا دکھ نہیں ہے سر، ہمیں جانوں کی دکھ ہے، ہمیں جانوں کی دکھ ہے، ہمیں مال کی دکھ نہیں ہے، ہمیں اس چیز کا ٹینشن ہے، لوگوں کی جانے گئی ہیں، لوگوں کی جانے گئی ہیں۔ ہمیں
ابھی تک ریسکیو میں 48 کے قریب لوگوں کو بچا لیا گیا ہے، پرنتو جو لوگ پانی کے ریلوں سے بہ گئے ہیں ان کا ابھی تک کوئی اتا پتا نہیں ہے۔ آپریشن ابھی جاری ہے۔ اس گھٹنا کے حوالے سے اور بیورے کی پرتیکشا ہے۔ سپتی محمد حسن، ریڈیو تہران، سری نگر۔
اسی کے ساتھ راجنیتک چرچا سماپت ہوئی۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ شروتاؤ، کارکرم راجنیتک چرچا کے بعد اب عرفہ دیوس پر پرستت ہے ہمارا وشیش کارکرم۔
ہمارا
दोस्तों, अरफा के पवित्र मौके पर हम एक विशेष कार्यक्रम के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं। मरियम मेहरजादी और अख्तर अब्बास का सलाम स्वीकार कीजिए। आशा करते हैं कि इस पवित्र अवसर पर हमारे कार्यक्रम के माध्यम से आपको अरफा के दिन के बारे में कुछ अहम जानकारी प्राप्त होगी।
दोस्तों, अरफा का दिन एक ऐसा पवित्र दिन है कि जिस दिन हम एक ऐसी मन को सुकून देने वाली दुआ पढ़ते हैं जिस दुआ को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अरफात के मरुस्थल में पढ़ी थी। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि अरफा को क्यों अरफा कहा जाता है। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह के फरिश्ते जिब्राइल, ईश्वरीय दूत हजरत इब्राहिम को अरफा के दिन इस स्थान पर लेकर आए थे। उस समय दोपहर का समय था, तो जिब्राइल ने कहा, हे इब्राहिम, अपनी गलतियों को स्वीकार करो, इसके तरीके को सीखो, क्योंकि जिब्राइल ने कहा था कि स्वीकार करो, इसलिए इस स्थान को अरफात के नाम से जाना जाने लगा। अरफात पवित्र नगर मक्का से 21 किलोमीटर दूर जबलुर रहमा नामक पहाड़ के आंचल में एक मरुस्थलीय क्षेत्र है। ऐसा विशाल मैदान जहां इंसान सांसारिक व भौतिक चीजों को भूल जाता है। हज के अविस्मरणीय संस्कारों में से एक अरफात के मैदान में ठहर कर ईश्वर की उपासना करना भी है। ज़िलहिज महीने की 9 तारीख को हाजियों को सूर्योदय से सूर्यास्त तक अरफात के मैदान में ठहरना होता है, जहां वे रुककर अल्लाह की इबादत करते हैं। अरफे का दिन दुआ और इबादत के लिए कुछ खास दिनों में से एक है, विशेषकर उस दिन अरफात के मैदान में हों।
पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफे के दिन के महत्व के बारे में बताते हुए फरमाते हैं कि जब लोग अरफात में ठहरते हैं और अपनी मांग को गिड़गिड़ा कर पेश करते हैं, तो ईश्वर फरिश्तों के सामने इन लोगों पर गर्व करता है और उनसे कहता है, क्या नहीं देखते कि मेरे बंदे बहुत दूर से गर्द में अटे मेरे पास आए हैं, अपना पैसा मेरे मार्ग में खर्च किया है और अपने शरीर को थकाया है। मैं अपनी शान की कसम खाता हूँ कि उन्हें इस तरह पाप से पवित्र कर दूंगा जिस तरह वे माँ के पेट से पैदा होते हैं। यही कारण है कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल देते हैं, अरफात में वो व्यक्ति सबसे बड़ा पापी है जो वहाँ से लौटे और ये ख्याल करे कि उसे क्षमा नहीं किया गया है। इस प्रकार हाजी हज के पहले दिन अरफात के मैदान में पापों से पवित्र हो जाते हैं ताकि हाजी बनने के योग्य हो सके। दुआ अल्लाह के बंदों द्वारा की जाने वाली सबसे निष्ठापूर्ण इबादत है। इसका कारण यह है कि जब इंसान अल्लाह के सामने दुआ करता है तो उस समय वो सब कुछ भूल जाता है, अन्य लोगों से दूरी बनाकर केवल और केवल अल्लाह से ही अपने दिल की बात करता है।
इंसान अल्लाह की जो इबादत करता है उसका मूल तत्व अल्लाह से दुआ करना है, क्योंकि जब इंसान की आशा अल्लाह के अतिरिक्त अन्य चीज़ों से टूट जाती है और ऐसे में वो अपने पालनहार के सामने अपनी विवशता व्यक्त करता है, उसी के सामने हाथ फैलाता है और अपने दिल को पूरी दुनिया से काटकर उसी से जोड़ लेता है, तो ऐसी स्थिति में इंसान अल्लाह के प्रति संपूर्णता और उसके दुआ ग्रहण करने, उसकी सुनने, सबके निकट होने और हर चीज़ का सामर्थ्य रखने की विशेषताओं को पूरी निष्ठा के साथ स्वीकार करता है। यही इबादत की सच्चाई और एकेश्वरवाद का सार है। दुआ के लिए कहा जाता है कि दुआ उपासना का निचोड़ है। इसका अर्थ यह है कि इबादत की मूल आत्मा दुआ है, जिसके बिना उसका ढांचा किसी काम का नहीं है। दुआ किसी भी स्थिति में, किसी भी स्थान पर और किसी भी समय की जा सकती है, जिसका असर भी होता है। یہ ضرور ہے کہ ایسے کچھ استھان اور ایسے وقت ہیں کہ اللہ نے اس استھان اور اس سمے کو مہتو دیا ہے جہاں دعا کے سویکار ہونے اور اس کے پربھاوی ہونے کی وشیش گارنٹی ہے۔ یہ گن اور شریشتتا منوشک کے لیے ہے کہ وہ سمے اور استھان سے سروتم لابھ پراپت کرے، جتنا سمبھو ہو سکے اپنی مانوی پورنتا کے قریب پہنچ سکے۔
جیسا کہ کہا گیا ہے کہ کچھ استھان اور سمے دعا کے لیے خاص ہیں، وبھن پرستھیوں اور استھانوں کے درشٹیگت دعا اور عبادت کا مہتو بھی بھن ہوتا ہے۔ جیسے کہ مسجدوں، اپاسنا ستھلوں اور پوتر کعبے کی دشا میں دعا اور عبادت کا مہتو کچھ اور ہی ہے۔ اچت سمے بھی دعا کے قبول ہونے کا ایک مہتوپورن کارن ہے۔ کچھ ایسے دن ہوتے ہیں کہ جب ایشور سے ہمارا پراکرتک پریم جاگرک ہوتا ہے، جس سے ہمارے استھتو میں آدھیاتم کی جوتی جاگتی ہے۔ عرفے کا دن دعا اور عبادت کے لیے کچھ خاص دنوں میں سے ایک ہے، وشیش کر جب اس دن عرفات کے میدان میں ہوں۔ عرفے کے دن کے بارے میں اسلامی کتابوں میں آیا ہے کہ عرفہ وہ دن ہے کہ جب ایشور اپنے بندوں کا عبادت اور اپاسنا کے لیے آہوان کرتا ہے۔ اس دن ایشوریہ کرپا اور دیا دھرتی پر پھیلی ہوئی ہوتی ہے اور شیطان اپمانت ہو جاتا ہے۔ اسی طرح معصومین کے کتھن میں آیا ہے کہ جب کوئی عرفات میں ٹھہرتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو یدی اس ٹھہرنے والے کے پاپ ریت کے دانوں کی سنکھیا میں ہو یا آکاش کے تاروں یا ورشا کی بوندوں کے سمان ہیں، تب بھی اللہ اسے اپنی رحمتوں سے معاف کر دے گا۔
دوستوں، عرفات کا استھان ایک ایسی جگہ ہے جو اللہ کے چاہنے والوں اور اس کی عبادت کرنے والوں کے لیے خاص ہے۔ یہ وہ بھومی ہے جسے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یادیں جڑی ہوئی ہیں۔ یہ حاجیوں کے لیے وششٹ اوسر ہے کہ وہ اپنے پاپوں کا پرائشچت کریں اور اگلے دن منا کے سنسکار کے لیے تیار ہوں۔ 9 ذی‌الحج کے دن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پوتر پریجنوں کے حوالے سے بہت سی دعائیں اور سنسکار پیش کیے گئے ہیں تاکہ اس پوتر دن سے زیادہ لابھ اٹھایا جا سکے۔ اس دن روزہ رکھنا، اسنان کرنا، وبھن پرکار کی نماز اور دعا پڑھنے پر بل دیا گیا ہے۔ اس دن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا ایک بھاگ اس پرکار ہے: ہر برائی سے پاک ایشور کا نرک پر ادھیکار ہے، ہر برائی سے پاک ایشور کی سورگ میں انوکمپائیں پھیلی ہوئی ہیں، ہر برائی سے پاک ایشور کا نیائے پرلے کے دن ظاہر ہوگا۔ اس دن سب سے ویاپک و من کو سکون کرنے والی دعا کا نام دعائے عرفہ ہے، جسے امام حسین علیہ السلام نے عرفات کے مرستھل میں پڑھی تھی۔ اس دعا میں ادھیاتم کے بہت گہرے ارتھ موجود ہیں۔ اسی پرکار پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے پرپوتروں نے بھی عرفہ کے دن کی اہمیت پر بہت زیادہ زور دیا ہے اور اس دن سے وشیش دعائیں بتائی ہیں۔
اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جو لوگ حج کے لیے گئے ہیں ان کے لیے عرفہ کا دن بہت ہی آدھیاتمک دن ہے۔ وہ اپنا حج ویوہارک روپ سے اس دن عرفات کے مرستل میں گزار کر شروع کرتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے عرفات کے میدان میں، جو مکے سے باہر ہے، حاجیوں کے ٹھہرنے کا کارن ان شبدوں میں بیان کیا ہے: عرفات حرم کی سیما سے باہر ہے اور ایشور کے مہمانوں کو چاہیے کہ دروازے کے باہر اتنا گڑ گڑائیں کہ پرویش کے یوگیہ ہو جائیں۔ اسی پرکار حضرت علی علیہ السلام عرفات کے میدان کی اہمیت کے بارے میں کہتے ہیں: کچھ گناہوں کے پرباؤ اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ وہ صرف عرفات کے دن ہی معاف کیے جاتے ہیں۔ یہی کارن ہے کہ اس مرستلیہ کنتو پوتر بھومی میں حاجی ایشور سے کشما کی بہت آشا رکھتے ہیں۔ حرم پوتر کعبے کے آس پاس کے اس کھیتر کو کہتے ہیں جہاں حاجیوں پر چھوٹے سے چھوٹے پرانی کو کشت دینا ورجت ہے۔ اسی طرح دھارمک شکشاؤں میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کو یہ بالکل پسند نہیں کہ اس کے بندے ایک دوسرے کے سامنے اپنے پاپوں کو سویکار کریں، کیونکہ ایک دوسرے کے راز جاننے سے ان کے مان سمان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ چونکہ اللہ بہت دیالو، رازوں کو چھپانے والا اور کشماشیل ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اپنی گناہوں اور پاپ پورن کاریوں کو کیول اسی کے سامنے سویکار کریں۔ اللہ کے سامنے یہ سویکار روکتی انسان کے اہنکار کو ختم کرتی ہے اور بندے کو اور ونمر بناتی ہے۔
روایت میں آیا ہے کہ حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ایک شش عبداللہ بن جندب کو عرفات کے میدان میں دیکھا گیا کہ وہ لمبے سمے تک آسمان میں اپنا ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ان کی آنکھوں سے لگاتار آنسو نکل رہے ہیں اور ان کے گال زمین پر لگے ہوئے ہیں۔ میں پورے میدان میں کسی انیہ ویکتی کو ایسی استھتی میں دعا کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ شام کے سمے جب لوگ عرفات کے میدان سے مشعر کی اور جانے لگے تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کسی دوسرے کو آپ سے اچھی طرح سے دعا مانگتے ہوئے نہیں دیکھا۔ عبداللہ ابن جندب نے کہا، ایشور کی سوگند، میں اس سمے کیول اپنے بھائیوں کے لیے دعا کر رہا تھا، کیونکہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے سنا ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ کوئی ویکتی آنکھوں سے دور اپنے کسی ایمانی بھائی کے لیے دعا کرے تو آسمان سے یہ آواز دی جاتی ہے کہ تو نے اپنے بھائی کے لیے جتنا مانگا ہے اس سے سینکڑوں ہزار برابر تمہیں ملے گا۔ اس لیے میرے لیے یہ اچت نہیں تھا کہ ایک ایسی دعا کے لیے سینکڑوں ہزار برابر سویکار ہونے والی دعا کو چھوڑ دوں کہ جس کے بارے میں پتا بھی نہیں ہے کہ وہ سویکار ہوگی کہ نہیں۔ اسی طرح عرفات کی وادی میں حاجی امام حسین علیہ السلام کی اس دن کی وشیش دعا پڑھتے ہیں، مانو کسی وشال سماروہ کا آیوجن ہے جس میں ایشور کے بندے جیون ایوم برہمانڈ کے رہسیوں کو پراپت کرنا چاہتے ہیں اور ایشور سے نکٹ ہونے کے لیے ایک دوسرے سے پرتسپردھا کرتے ہیں۔
عرفات کی وادی امام حسین علیہ السلام کی اس دن کی وشیش دعا کی یاد اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے۔ عرفے کے دن امام حسین علیہ السلام اپنے بیٹوں، پریجنوں اور ساتھیوں کے ایک سموہ کے ساتھ ایسی استھتی میں اپنے خیمے سے باہر آئے کہ ان کے چہرے سے ونمرتا و ششٹتا کا بھاؤ پرکٹ تھا۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام جبل الرحمان نامک پہاڑ کے بائیں چھور پر کھڑے ہو گئے اور کعبے کی اور منہ کر کے اپنے ہاتھوں کو اس پرکار چہرے تک اٹھایا جیسے کوئی نردھن کھانا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اور پھر عرفے کے دن کی وشیش دعا پڑھنا شروع کی۔ یہ دعا شدھ ایکیشورواد اور ایشور سے کشما یاچنا جیسے وشیوں سے سمپن ہیں۔ واسطو میں امام حسین علیہ السلام نے دعائے عرفات ورا انیک نیتک ایوم پرشیشک بندوؤں کو ہمیں سکھایا۔ اس ملیوان دعا میں جگہ جگہ پر نیتکتا کے اچ ارتھ نہت ہیں۔
دوستوں، کاریکرم کا سمے یہیں پر سماپت ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ شروتاؤ، عرفے کے دن کے بارے میں ہمارا وشیش کاریکرم آپ نے سنا، اور اب پرست ہے ہمارا ساپتاہک کاریکرم اجول بھوشیہ۔
اجول بھوشیہ،
دعا
दोस्तों, कार्यक्रम उज्जवल भविष्य की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं मरियम मेहरदादी और रविश जैदी का सलाम स्वीकार कीजिए। इस कार्यक्रम में हम इस्लामी क्रांति की सफलता के बाद ईरान में दूरसंचार और जनसंचार माध्यमों के विकास की चर्चा करेंगे।
दोस्तों, हमने पिछले कार्यक्रम में आपको बताया था कि इस्लामी क्रांति के बाद ईरान में सांस्कृतिक विरासत, हस्तशिल्प और पर्यटन के संगठनात्मक और संरचनात्मक क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव हुआ है। इस तरह से कि क्रांति से पहले सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए ऐसी कोई संस्था नहीं थी। काजारी काल से ही ईरानी हस्तशिल्प को चुनौतियों और परिवर्तनों का सामना रहा है, लेकिन इस्लामी क्रांति के बाद इस क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया, जिसके कारण इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण गुणात्मक वृद्धि देखी गई। दुनिया भर से पर्यटकों की संख्या में वृद्धि, विशेष रूप से पश्चिमी देशों के पर्यटकों का बड़ी संख्या में ईरान का रुख करना, पश्चिमी मीडिया के उस अभियान को झटका लगा है जिसके द्वारा ईरान की बहुत ही खराब छवि पेश की जा रही थी।
ईरान के पूर्व शाही शासन ने ईरान में राजशाही इतिहास को बढ़ावा देने के लिए व्यापक प्रयास किए और अमेरिका और पश्चिमी सरकारों के समर्थन पर निर्भर होने के बावजूद वो देश के पेर्सपोलिस और पासागार्ड जैसे ऐतिहासिक स्मारकों की पंजीकृत कराने में सक्षम नहीं था। हालांकि क्रांति की सफलता के बाद यही काम अब रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया है और इन स्मारकों को विश्व विरासत के रूप में पंजीकृत कर लिया गया है। इस्लामी क्रांति से पहले आम लोगों की आय काफ़ी कम होती थी, जिसके कारण वे यात्रा का खर्च वहन नहीं कर पाते थे, इसीलिए पर्यटन सिर्फ समाज के कुछ वर्गों तक ही सीमित था।
ईरान में शाही शासन के पतन और इस्लामी क्रांति की सफलता के बाद शाही परिवार और दरबारियों की संपत्तियों को ईरानी राष्ट्र के हित में जब्त कर लिया गया। शाही परिवार के सदस्यों और दरबारियों के पास मनोरंजन और अय्याशी के लिए 83 महल थे, जिन्हें जब्त करके संग्रहालयों में बदल दिया गया। ईरान में शाही परिवार के महलों को शिक्षाप्रद राष्ट्रीय परिसरों में परिवर्तित कर दिया गया, जिन्हें देखने के लिए लाखों घरेलू और विदेशी पर्यटक पहुंचते हैं।
दोस्तों, इस्लामी क्रांति के बाद जिन क्षेत्रों में ईरान ने उल्लेखनीय प्रगति की है उसमें से एक है कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी। इमाम खुमैनी के नेतृत्व में इस्लामी क्रांति की शानदार सफलता के बाद ईरान ने संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में न केवल आत्मनिर्भरता हासिल की है बल्कि दुनिया के विकसित देशों के स्तर की तकनीक तक अपनी पहुँच बनाई है। दूरसंचार का विकास अब सिर्फ टेलीफोन ग्राहकों की संख्या तक सीमित नहीं है बल्कि इसके अलावा नए युग में अब स्मार्ट मोबाइल यहां तक कि 4G और 5G तकनीक की कड़ी प्रतिस्पर्धा का मैदान बना हुआ है। हाई स्पीड इंटरनेट और सामाजिक नेटवर्क भी अब इस क्षेत्र में प्रगति का एक मापदंड माना जाता है।
क्रांति से पहले देश में दूरसंचार तकनीक का कोई वजूद नहीं था और 100% तकनीक दूसरे देशों से आयात की जाती थी। क्रांति के बाद पिछले 4 दशकों के दौरान ईरान के क्रांतिकारी इंजीनियरों ने बड़े प्रयास किए और आज देश को दूरसंचार तकनीक में दुनिया के विकसित देशों की पंक्ति में ला खड़ा किया है। उपग्रहों का उत्पादन और उन्हें अंतरिक्ष में भेजना दूरसंचार के क्षेत्र में ईरान की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है। ईरान ने पहली बार 3 फरवरी 2009 को इस्लामी क्रांति की सफलता की 30वीं वर्षगांठ पर उम्मीद उपग्रह लॉन्च किया था। आज देश का 98% भाग दूरसंचार नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। ईरान में मोबाइल फोन की दर 110% है। इस्लामी क्रांति से पहले सिर्फ 312 गांवों में टेलीफोन की सुविधा थी, लेकिन अब 55,000 से अधिक गांवों में टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध है।
हर वो गांव जहां 20 से अधिक परिवार रहते हैं देश के दूरसंचार नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। ईरान में इंटरनेट इस्तेमाल करने की दर 70% है। यहां तक कि एक स्थान से दूसरे स्थान पलायन करने वाले कबीले जो तंबुओं में रहते हैं स्पीड वाले इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ईरान में 51,052 वैज्ञानिक लेख प्रकाशित हो चुके हैं जिसके कारण इस क्षेत्र में ईरान पहले स्थान पर है। कई बार ईरानी युवाओं ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले कंप्यूटर ओलंपियाड में शीर्ष रैंकिंग हासिल की है जिससे पता चलता है कि सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ईरान की शिक्षा व्यवस्था उच्च श्रेणी की है और इस देश में युवाओं की प्रतिभाओं को निखारा जा रहा है।
सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ईरान में 1,200 से अधिक नॉलेज बेस्ड कंपनियां सक्रिय हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नॉलेज बेस्ड उत्पादों के निर्यात में ईरानी कंपनियां पश्चिमी एशिया के क्षेत्र में पहले नंबर पर हैं। उपग्रहों के डिजाइन निर्माण और प्रक्षेपण के क्षेत्र में ईरान दुनिया के शीर्ष 10 देशों में शामिल है। स्मार्ट व्यवसाय के विकास में 4,000 से अधिक IT आधारित स्टार्टअप के साथ ईरान मध्यपूर्व में पहले स्थान पर है। ईरान की नॉलेज बेस कंपनियों में से 40% का संबंध सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से है। ईरान उन गिने चुने देशों में से एक है जो डिजिटल रेडियो और टेलीविजन ट्रांसमीटर का उत्पादन करते हैं। फाइबर ऑप्टिक्स और संबंधित स्विच के सभी उपकरण और प्रौद्योगिकियां ईरान में उत्पादित की जाती हैं। अमेरिका के कड़े प्रतिबंधों के बावजूद उपग्रह संबंधित संचार उपकरणों का उत्पादन ईरान में घरेलू विशेषज्ञों द्वारा किया जा रहा है।
डिजिटल सामग्री प्रबंधन सॉफ्टवेयर ब्रॉडबैंड नेटवर्क के संदर्भ में वीडियो स्ट्रीमिंग के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है। इन सॉफ्टवेयर में कई तकनीकी जटिलताएं हैं इसलिए इनकी निर्माण तकनीक दुनिया में कुछ विकसित देशों में ही उपलब्ध है और ईरान भी इन देशों में से एक है। लाइव और ऑन लाइव डिमांड इंटरनेट सामग्री का प्रसारण सबसे उन्नत तकनीकों में से एक है जिसे ईरान में नॉलेज बेस कंपनियों के विशेषज्ञों द्वारा डिजाइन और उत्पादित किया जाता है। मध्य पूर्व में ईरान एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास अपना इंटरनेट पर सर्च इंजन है। ईरान बुनियादी ढांचे और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के हार्डवेयर के क्षेत्र में अग्रणी देशों में से एक है। ईरान में इस क्षेत्र में बड़ी क्षमता और जबरदस्त प्रतिभा है। अगर इस क्षमता को सही दिशा दी जाती है तो देश इस क्षेत्र में एक बड़ी छलांग लगा सकता है।
वर्तमान युग को संचार का युग कहा गया है और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का बुनियादी ढांचा सक्रिय जनसंचार के क्षेत्र में देशों के विकास में मदद कर सकता है। समाचार पत्रों रेडियो टेलीविजन और सिनेमा जैसे जनसंचार माध्यमों ने ईरानी संस्कृति के विकास और नई सूचनाओं को प्रसारित करने और विचारों को आदान प्रदान में मुख्य भूमिका निभाई है। इस्लामी क्रांति से पहले मोहम्मद रजा पहलवी के शासन ने इमाम खुमैनी रहमतुल्ला अलैह और उनके क्रांतिकारी साथियों के न्याय की मांग को लेकर किए गए आंदोलन को कुचलने और उनकी आवाज़ को दबाने के लिए जासूसी झूठा प्रोपेगंडा और दमनकारी नीतियों का सहारा लिया और मीडिया पर अपना एकाधिकार जमाकर क्रांति को असफल बनाने की कोशिश की। इसके जवाब में इमाम खुमैनी और उनके सहयोगियों ने लोगों तक न्याय का संदेश पहुंचाने और क्रांति के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कैसेट्स पंफलेट और पत्र जैसे पारंपरिक संचार साधनों का उपयोग किया। ये कहा जा सकता है कि इमाम खुमैनी के आंदोलन को शुरू से ही मीडिया वार का सामना करना पड़ा। IT के प्रोफेसर हमीद मौलाना का कहना है कि ईरान की इस्लामी क्रांति ने संस्कृति और संचार के दृष्टिकोण से साबित कर दिया है कि इस्लामी देशों और विशेष रूप से ईरान में आधुनिक संचार माध्यमों के मुकाबले में पारंपरिक संचार साधनों का एक खास महत्व है और ये साधन आज भी प्रासंगिक हैं।
इस क्रांति में पारंपरिक सूचना और संचार के बुनियादी ढांचे ने अहम भूमिका निभाई है। ईरान में इस्लामिक क्रांति उस समय सफल हुई जब रेडियो और टेलीविजन से लेकर सिनेमा और प्रेस तक सभी आधुनिक संचार चैनलों पर शाही शासन का वर्चस्व था। मीडिया का इस्तेमाल करते हुए पहलवी शासन ने ईरानी समाज की सांस्कृतिक प्रवृत्ति को बदलने और इसका पश्चिमीकरण करने की बहुत कोशिश की थी।
लेकिन ईरान की इस्लामी क्रांति के संस्थापक इमाम खुमैनी ने पारंपरिक संचार साधन जैसे कि मस्जिदों, इमामबाड़ों और बाजारों का उपयोग करके आधुनिक मीडिया के मुकाबले में महान सफलता हासिल की। ऐसी परिस्थितियों में कि जब इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह और उनके कई साथी विदेशों में देश निकाले का जीवन व्यतीत कर रहे थे और शाही शासन ने देश में चप्पे चप्पे पर जासूस तैनात कर रखे थे, क्रांति के संदेशों को लोगों तक पहुंचाना एक चुनौती थी। लेकिन ईरानी युवाओं ने बहुत ही समझदारी से इन संदेशों को आम लोगों तक पहुंचाया और इस्लामी क्रांति की सफलता के लिए भूमि प्रशस्त की। जिस तरह से ईरान ने उस समय इस असंतुलित जंग में सफलता हासिल की, उसी तरह से आज भी इस्लामी व्यवस्था पश्चिम की ताकतवर मीडिया के सामने अपने सीमित साधनों से सफलता के मार्ग पर अग्रसर है।
तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है, अनुमति दीजिए।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओ, इसी के साथ हमारी ये सभा भी समाप्त होती है। हमारा ईमेल है hindi@wbs.irib.ir। हमारी वेबसाइट है pastoday.com/hi। तो अनुमति दीजिए, खुदा हाफिज।